मीका अध्याय 3। अब परमेश्वर उनके विरुद्ध जो दासत्व में चले गए हैं अपने आने वाले दंड के बारे में कह रहा है। मीका अध्याय 3 पद 1 से लेकर 5 तक। और मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इसराइल के घराने के न्यायियों, सुनो, क्या न्याय के भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस उधेड़ लेते हैं, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उघेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हांडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। अतः परमेश्वर उन लोगों के बुरे कामों का वर्णन करता है। परमेश्वर का न्याय, जिसको वे सुनना भी नहीं चाहते हैं, आएगा जरूर। उनके भविष्यद्वक्ता उनसे शांति की बात कह रहे हैं, परंतु सत्य तो ये है कि वे उन्हें पथ भ्रष्ट कर रहे थे। मीका अध्याय 3 पद 6 और 7। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा, और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्यत वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों या भविष्यत वक्ताओं के मुंह काले होंगे, और सबके सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परमेश्वर अब और अधिक देर तक उनसे बात नहीं करने वाला है। परमेश्वर की आवाज शांत हो जाएगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जंगल में आने से पूर्व 400 साल तक का समय परमेश्वर के चुप हो जाने का ही समय था। मीका अध्याय 3 पद 8 से लेकर 11 तक। परंतु परमेश्वर ने कहा, मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि मैं याकूब को उसका अपराध और इसराइल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घरानों के प्रधानों, हे इसराइल के घरानों के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, ये बात सुनो। तुम सियोन की हत्या करके और यरूशलेम की कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, तो भी वो ये कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। वहां हरेक अगुआ भ्रष्ट था, नागरिक अगुए और धार्मिक अगुए दोनों, लोगों के प्रधान, लोगों के न्यायी, नगर परिषद के लोग और सूबे के अधिकारी सभी घूस ले रहे थे। सेवकाई एक व्यवसाय बन गई थी। व्यवसायिक सेवक दाम ले लेकर शिक्षा दे रहे थे। भविष्यद्वक्ता एक ओर तो रुपए के लिए भावी कर रहे थे और दूसरी ओर कहते थे, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, कोई विपत्ति ना आएगी। मीका अध्याय 2 पद 12। इसलिए तुम्हारे कारण सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडर ही खंडर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वे वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। यरूशलेम वास्तव में मलबे का ढेर हो गया था। आज प्रोफेसर शीलो उसी यरूशलेम के मलबे की खुदाई कर रहे हैं जो मीखा की भविष्यवाणी का प्रमाण था। यद्यपि यरूशलेम को परमेश्वर ने अशूरों से बचा लिया था, बाद में नबूकदनेस्सर ने आकर उसे ढा दिया था। उसने नगर का विनाश किया, मंदिर को गिराया तथा यरूशलेम की शहरपना और घरों को नष्ट कर दिया। आज भी ओपेल के पहाड़ों में बहुत रोचक खुदाई की जा रही है, जो ठीक शिलो के ताल के ऊपर है। इसी के नीचे हेजकिय्याह ने सुरंग बनवाई थी और यही वो पहाड़ी है जो गीहोन के सोतों और शिलो से आरंभ होती है। उसके ऊपर की पहाड़ी ओपेल दाऊद का शहर कहलाती है और यही आगे मंदिर पर्वत तक जाती है। ये मोरिया पर्वत का एक हिस्सा है। जैसा कि अब वे उन घरों पर से मलवे की परतें हटा रहे हैं जिनमें मीखा की भविष्यवाणी के समय लोग रहते थे, ये वही घर है जिनमें उस समय के लोग रहते थे। और रोचक बात यह है कि जब उन्होंने इसकी परत हटाई तो उन्हें झूठे देवताओं की ढेर सारी छोटी छोटी मूर्तियां मिली। उस समय लोग इनकी उपासना करते थे। वहां इन छोटी मूर्तियों का इतना बड़ा भंडार मिला कि आप विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने उसका प्रदर्शन भी किया था। उनको भविष्यत वक्ताओं ने चेतावनी दी थी कि मूर्ति पूजा छोड़ दे। इसी मूर्ति पूजा के कारण वे नाश हुए, परंतु झूठे भविष्यत वक्ता कह रहे थे सब कुछ ठीक है, क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। परंतु सत्य तो ये था कि परमेश्वर दंड देने के लिए तैयार हो चुका था।